वीरसेनाचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो चौथी पुस्तक है क्षेत्रानुगम, उसमें हम 125 पृष्ठ पर आए हैं। अब यहाँ संयम मार्गणा की बात चल रही है, क्षेत्र संबंधी संयम मार्गणा में, तो उसमें संयम के सब भेद देखे थे, संयता संयतों की भी बात की थी, अब असंयतों के बारे में बता रहे हैं। तो असंयतों में हमें मालूम है कि चार गुणस्थान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसमें से असंयत मिथ्या दृष्टि वाले कहाँ रहते हैं या उनका क्षेत्र कितना है, तो पूरा लोक है। पहले गुणस्थानवर्ती सभी असंयत ही है। तो ये हमने 65 नंबर का सूत्र कल पढ़ा था, अब उस पर शंकाकार पूछता है। 125 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। ओग प्ररूपणा गुणस्थानों के अभेद से और भेद से जो की गई है, वह अर्थ ओग और आदेश ओग, या जो कहे ना ओग के समान लिखा है ना, सर्व ओग के समान सर्व लोक में रहते हैं, ऐसे यहाँ जो ओग की बात की थी, तो शंकाकार की ऐसी शंका है कि ओग प्ररूपणा में ये गुणस्थानों के अभेद से और भेद से जो की गई है, सब मिलकर भी ओग की हो जाएगी और अलग अलग भेदों की भी बात करेंगे। वह अर्थ ओग और आदेश ओग के भेद से दो प्रकार की है। आदेश ओग भी गुणस्थानों के भेद से 14 प्रकार का होता है। सो यहाँ ओग ऐसा सामान्य पद कहने पर किस ओग का ग्रहण किया गया है, यानी किसकी बात है, आदेश यानी विशेषों की बात है कि सामान्य की बात है, ऐसा पूछते हैं। तो कहते हैं आदेश ओग के अवयवभूत मिथ्या दृष्टियों के ओग का ग्रहण किया गया है। गुणस्थानों के अनुसार ऐसा डायरेक्ट बता दे, और यहाँ उसमें से भी जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है विशेष किया ना, उसमें भी उसकी यहाँ बात है। शंका, यह अर्थ कैसे प्राप्त होता है, ये आपने कहाँ से निकाला उसका मीनिंग? तो कहते प्रत्यासत्ति से, अर्थात सामीप्य से। पहले हमने ये शब्द बहुत बार आया था, प्रत्यासत्ति यानी नजदीकता, सामीप्य। आदेश ओग का ग्रहण किया गया है यह जाना जाता है, यानी इसमें से जो बात निकलती है वो आदेश ओग के कथन के अनुसार या उसके नजदीक वाला है, उससे मिलता जुलता है, इसलिए आदेश ओग का ग्रहण किया है। शंकाकार पूछता है प्रत्यासत्ति तो कथनचित अन्य भी ओगों के साथ हो सकती है, यानी उसकी जो सिमिलैरिटी है वो अन्य ओग के साथ भी हो सकती है। तो समाधान, ऐसी शंका पर उत्तर देता है कि नहीं, क्योंकि अन्य ओघों के साथ मिथ्या दृष्टियों के समान प्रकर्षता से प्रत्यासत्ति का अभाव है। मिथ्या दृष्टियों का संपूर्ण लोग जो कहा है, तो अन्य गुणस्थानों के साथ ऐसी जो बात है वो नहीं रहती, इसलिए मिथ्या दृष्टियों का जो गुणस्थानों की बात है वो गुणस्थान की अपेक्षा ओग के समान ऐसा कहा है। यह अर्थपद सर्वत्र लगाना चाहिए। शंका, असंयत चारों गुणस्थानों का एक योग क्यों नहीं किया, योग यानी समास, यानी सबको मिलकर एक कथन क्यों नहीं कहा, क्योंकि जैसे संयता संयत है, संयमी वाले हैं। वैसे सभी असंयत मिलकर एक ही सूत्र या एक ही क्यों नहीं बनाए उन्होंने, योग यानी उसका जोड़ समास इसको कहा है, ग्रुप। हाँ, एक साथ करना समाधान। तो कहते नहीं किया क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का शेष सासाधन सम्य दृष्टि आदि गुणस्थानों के साथ क्षेत्र की अपेक्षा प्रकर्षतम प्रत्यासक्ति का अभाव है। प्रकर्षण विशेष अधिक, ये है ना, प्रकर्ष से हमको पता चला। तो ये कहते हैं मिथ्या दृष्टियों का जो है, हमने अभी देखा था पूरा ही रोग। अब सासाधन आदि जो है वो तो संगी पंचेंद्रियों में ही होता, तो उसमें तो ये सब नहीं होगे, ख्याल है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनमें नजदीकता नहीं है, यानी क्या, वो तो पूरा लोक और ये तो असंख्यात भाग वगैरह कहेंगे। अब असंयतों में अगले गुणस्थान बता रहे हैं, शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिच्छा इट्ठी, असंयत सम्मादिट्ठी, ओघम। यानी असंयतों में, असंयतों की बात चली है, उसमें से मिथ्या दृष्टि को अलग बता दिया। अब कहते हैं इनमें असंयतों में सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव ओघ के समान लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इन सूत्रोक्त तीनों ही गुणस्थानों का सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग के साथ और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र के साथ प्रत्यासत्ति पाई जाती है। यानी जो कथन ओघ में दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थानों के लिए किया था, अब ये अपना क्राइटेरिया असंयमियों का है, तो उतरी वही बात होगी क्योंकि उनमें तो असंयम ही होता है। इसलिए उक्त तीनों गुणस्थानों का एक योग इस सूत्र में किया गया है। हरेक का भले क्षेत्र अलग अलग हो, फिर भी लोक का असंख्यात्वा भाग इतनी सिमिलैरिटी है कथन में। इस प्रकार संयम मार्गणा समाप्त तो हुई। अब हम 126 पृष्ठ पर आए, अगली मार्गणा देखेंगे हम, दर्शन मार्गणा। तो दर्शन मार्गणा की बात ऊपर हम सूत्र में पहले पढ़ते हैं। दंशनाणु वादेन चक्षु दंशनीसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव क्षीण कसाय वीदराग छदुमत्था केवड़ी खेते लोगस्य असंख्येज यदि भागे। तो चक्षु दर्शनी कौन कौन हो गए जीव, हाँ चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, संज्ञा संज्ञा दोनों। तो इसलिए वो कहते हैं लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। तो केवली समुदाय वाले को लेना कि नहीं लेना, हाँ क्या कहते आप, केवली वाले को लेना कि नहीं लेना। हाँ देवेंद्र भाई, आप क्या कहते अश्विन भाई, हाँ उन्हें केवल दर्शन है, चक्षु चक्षु दर्शन कहाँ है उनके, केवल दर्शन पाया जाता है। देखो दर्शन मार्गणा के अनुवाद से चक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान तक, अभी हमने सूत्र में पढ़ा ना, 12वें गुणस्थान तक है चक्षु अचक्षु दोनों ही। प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। अभी इसमें से वो कौन कौन से पद कितना है वो बताएंगे। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात गत चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि जीव। अब ये मिथ्यादृष्टि पूरे लोक में रहेगी क्या नहीं रहेंगे, चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि है, चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि कहा ना, तो चक्षुदर्शनी चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय में है। एक इंद्रिय की बात करेंगे, अचक्षुदर्शनियों की बात करेंगे तो कितने क्षेत्र में रहेंगे, पूरा लोक, वहां तो एक इंद्रिय भी उसमें आ जाते हैं। तो ये जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक से संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना जानकर करना चाहिए, यानी कितवे भाग है वगैरह उसका भागाकर जानकर वो फिर समझना चाहिए। इसी प्रकार मारणांतिक समुद्घातगत मिथ्या दृष्टि चक्षुदर्शनियों का क्षेत्र है। मारणांतिक समुदात होगा कि नहीं होगा? होगा। विशेष बात यह है कि मारणांतिक समुदघातगत चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यक लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि मारणांतिक समुदात में हमने देखा प्रदेश फैले रहते हैं, तो चक्षुदर्शनी मरकर स्पेशली अभी पंचेंद्रियों की अपेक्षा हम देखते हैं नारकियों में देव में उत्पन्न हो गए तो असंख्यात योजन तक या राजोम तक वो फैलेंगे। इसी प्रकार से उपपाद क्या हुआ? हाँ नहीं, ये तो क्षेत्र मैक्सिमम कब कहलाएगा उसकी बात है। हाँ, एक इंद्रियों में जाएंगे तो भी मारणांतिक समुदाय। हाँ, आपका ऐसा कहना है कि वो कहाँ तक फैलेंगे, तो एक इंद्रियों की अपेक्षा पूरा लोक है, मारणांतिक समुद्घात करके पूरे लोक में फैलेंगे, बराबर। हाँ, विशेष बात यह है मारणांतिक समुद्घात का चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि जीव, इसलिए मिथ्यादृष्टि लिया वो असंख्यात गुणे हैं। अभी ऐसा है ना, असंख्यात गुणा कर दिया उसको, पूरा लोक तो नहीं कहा है, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है उसकी बात चलेगी। तिर्यक लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार से उपपादगत मिथ्यादृष्टि चक्षुदर्शनियों का भी क्षेत्र कहना चाहिए। अपर्याप्त काल में चक्षुदर्शन का अभाव होने से यहाँ पर उपपाद पद नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, हम कहेंगे अरे वो कारमण अवस्था में कहाँ है चक्षुदर्शन, तो क्या कहते हैं? क्योंकि अपर्याप्त काल में भी क्षोभशम की अपेक्षा चक्षुदर्शन पाया जाता है। उपपाद होकर कहाँ जन्मने वाले हैं, चक्षु दर्शन के साथ अगला भव होगा, वहाँ की बात है। हाँ, उसकी बात है। जो चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रियों में जन्मने वाले जीव हैं, उन्हीं को चक्षु दर्शन होगा ना। एकेंद्रियों में जन्मने वाले उनको उपपाद अवस्था में कैसा होगा चक्षु दर्शन? या अपर्याप्त जो निवृत्ति है लब्धि अपर्याप्तकों में भी नहीं होगा, ये तो निवृत्ति अपर्याप्त की अपेक्षा से होगा। देखो शंका, यदि ऐसा है तो लब्धि अपर्याप्त जीवों के भी चक्षुदर्शनीपने का प्रसंग प्राप्त होता है, किंतु लब्धि अपर्याप्त जीवों के चक्षुदर्शन होता नहीं है। यदि लब्धि अपर्याप्त जीवों के भी चक्षुदर्शन का सद्भाव माना जाएगा तो चक्षुदर्शनी जीवों के अवहार काल प्रत्रांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होगा। ये जो संख्या में हमने देखी थी ना, तो वो संख्या के लिए हम अवहार काल निकालते थे, याद है? तो वो कहते हैं उनका अवहार काल यहाँ बदल जाएगा उसका समय। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त जीवों के चक्षुदर्शन चशु हुए, चक्षु करना उसको, निवृत्ति अपर्याप्त जीवों के चक्षुदर्शन होता है। इसका कारण यह है कि उत्तर काल में अर्थात अपर्याप्त काल समाप्त होने के पश्चात निश्चय से नियम से चक्षुदर्शनोपयोग की समुत्पत्ति का यानी उत्पत्ति का अविनाभावी चक्षुदर्शन का क्षोभशम देखा जाता है। यानी उनमें चक्षुदर्शन का क्षोभशम होता ही है, क्योंकि वे तो अभी पर्याप्ति पूरी होने पर यह सब कार्य होने वाला ही है। हाँ, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीवों के चक्षुदर्शन नहीं होता है, क्योंकि उनमें चक्षुदर्शनोपयोग की समुत्पत्ति का अविनाभावी ऐसा जो चक्षुदर्शनावरण कर्म के क्षोभशम का अभाव है। यानी वो चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रियों में भी अपर्याप्तों में वो नहीं होता, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। परंतु जो पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नाम कर्म वाले, उनमें तो चक्षुदर्शन का क्षोभशम पाया जाएगा, तो उनके उपपाद वाले जो पद है वहां भी चक्षुदर्शन है, ऐसा कहेंगे हम। अब आगे कहते 68 68 नंबर का सूत्र क्या रह गया? हाँ देखो, दो लाइन रह गई। इसी प्रकार सासादन समय दृष्टि आदि शेष गुण स्थानों की पर्यायार्थिक नए संबंधी प्ररूपणा जान करके कहनी चाहिए, जो हमने गुणस्थानों में उनकी जो प्ररूपणा देखी थी क्षेत्र संबंधी, क्योंकि सासादन आदि जो नियम से कौन से हो गए, चक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इसलिए वहाँ कहते वो उसको जानकर कहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखा हुआ है। अब अगला सूत्र देखते हैं। अचक्षु दंशनी सु मिथ्या दिट्ठी ओघम, यानी अचक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि जीव ओघ के समान, समान यानी कितने, सर्वलोक में रहते। यह सूत्र सुगम है क्योंकि एक इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। अब अगला सूत्र, शासन संवाद इट्ठी पहुड़ी जाव क्षीण कसाय वीदराग छदुमत्था ओघम। सासादन सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती अचक्षुदर्शनी जीव ओघ के समान लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। यानी जिसको चक्षुदर्शन है उसको अचक्षु भी है ही है, ऐसा नहीं समझना कि एक इंद्रिय से तीन इंद्रिय तक अचक्षु है और आगे वालों को चक्षु है, ख्याल है ना, ऐसा घोटाला होता है ना कभी कभी। अब शंकाकार पूछता है, इन अनंतरोक्त, अनंतरोक्त है ने? नेक्स्ट अनंतर उक्त, बाद में बताया हुआ है ना, यानी पहला तो 68 नंबर का सूत्र कहा और अभी जो हमने 69 नंबर का देखा, तो ये बाद में बताया हुआ, इमीडिएट नेक्स्ट बताया हुआ, उक्त है ने बताया हुआ। इन अनंतरोक्त दोनों सूत्रों का एक सूत्र क्यों नहीं बनाया? अनंतर यानी इमीडिएटली एक के पीछे एक, ऐसे दो जो बताए हैं, अन अंतर, अंतर के बिना बताए हुए ये दो सूत्र 68 और 69, ऐसे इन दोनों का मिलकर एक सूत्र क्यों नहीं बनाया? ऐसा कहते हैं कि दोनों ही ओक के समान है, ऐसी बात क्यों नहीं कही? तो उसका समाधान है, नहीं, क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि अचक्षु दर्शनी जीवों के साथ शेष गुणस्थानवर्ती अचक्षुनी चक्षुदर्शनी जीवों की प्रत्यासत्ति का अभाव है। यानी उनका क्षेत्र तो पूरा लोक है और इनका लोक का असंख्यात भाग है, यानी उनके सिमिलैरिटी, समानता या नजदीकता नहीं पाई जाती है, क्षेत्र में बहुत डिफरेंस है, इसलिए उन दोनों सूत्र अलग अलग बताए। अब अवधि दर्शनियों की बात कहेंगे। ओही दंशनी ओही नाणी भंगो, अवधि दर्शनी जीवों का क्षेत्र अवधि ज्ञानियों के क्षेत्र के समान लोक का असंख्यातवा भाग है। अवधि दर्शनी में सम्यक दृष्टि जीव लेना, कौन से गुणस्थान से कहाँ तक लेना? चौथे से 12वें तक, बराबर। अब केवल दंशनी की बात करेंगे। केवल दंशनी केवल नाणी भंगो, केवल दर्शनी जीवों का क्षेत्र केवल ज्ञानियों के क्षेत्र के समान लोक का असंख्यात भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक है। ये किसकी अपेक्षा? हाँ, समुद्घात करते हैं और स्वस्थान की अपेक्षा भी वो लोक का असंख्यात भाग या मनुष्य क्षेत्र का असंख्यात भाग कहेंगे। संख्यात्व, असंख्यात्व नहीं, संख्यात्व। ये दोनों ही सूत्र सुगम है, इसलिए पर्यायतिक नय की प्ररूपणा नहीं की जाती है, क्योंकि बहुत बार ये बता चुके हैं, इसलिए जो डिटेल्स है वहां अभी दोबारा नहीं रिपीट कर रहे। इस प्रकार दर्शन मार्गणा समाप्त हुई। अब यहाँ लेशा मार्गणा शुरू हो जाती है। सूत्र पहले पढ़ते हम, लेसानुवादेन किन्नलेस्य नीललेस्य काउलेस्येषु मिच्छादिट्ठी ओघम। तो कितना क्षेत्र होना चाहिए इनका? पूरा लोक। ऐसा क्यों? एक इंद्रियों में तीन अशुभ लेशा ही होती है, उनके तो शुभ लेशाएं होती ही नहीं है, तो उनकी मुख्यता से हम कहेंगे पूरा लोक। देखो, लेशा मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, और कापोत लेशा वाले जीवों में मिथ्यादृष्टि जीव ओघ के समान सर्वलोक में रहते हैं। तो इसमें हमने मिथ्यादृष्टि गुणस्थान देखा, तो इन्हीं तीन लेशाओं में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? पहले चार गुणस्थान तक है ना, ये अशुभ लेशाएं, बाद में मात्र शुभ लेशाएं होगी। और गति की अपेक्षा कौन कौन सी गतियों में ये हो गए? हाँ बोलो भाई। हाँ नरक गति, हाँ भवनत्री के अपर्याप्त अवस्था में लेंगे उनको भी। अपर्याप्त तो में तीनों अशुभ है, मिथ्यादृष्टि है ना अपर्याप्त, वहां तो मिथ्यादृष्टि जन्मते हैं। और अपर्याप्त अवस्था में हमने देखा था मिथ्यादृष्टि और सासाधन में अपर्याप्त अवस्था में उनके अशुभ लेशा होती है। अब यहाँ देखते हम आगे, तो पहले तो बताया सर्वलोक में रहते हैं, लिखा ना लेशा मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण लेशा वाले नील लेशा और कौपत लेशा वाले जीवों में मिथ्यादृष्टि जीव ओ के समान सर्वलोक में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपाद इन पदों के साथ सर्वलोक में रहने की अपेक्षा विहारवत स्वस्थान और वैक्रियक पद के साथ सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग में। स्वस्थान स्वस्थान आदि जो पहले पांच देखी ना उसमें तो सर्वलोक लिया, विहारवत और वैक्रियक के साथ असंख्यातवा भाग लिया, ऐसा क्यों? हाँ किस में होगी? त्रस में होगा, तो ये त्रसों में ही पाया जाएगा। और वैक्रिक समुद्घात एक इंद्रियों में भी है परंतु उसका स्थान पूरा लोक नहीं है। बादर वायु का एक और अग्नि का एक उसमें हमने देखा था, पूरा लोक तो उसका है नहीं एक क्षेत्र, इसलिए इसको अलग रखा उसकी अपेक्षा लोकों के असंख्यातवे भाग में। तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुण क्षेत्र में रहने की अपेक्षा तीनों अशुभ लेशा वाले मिथ्यादृष्टि जीवों के क्षेत्र की ओघ के साथ सदृशता है। यानी वो अपेक्षा भी बताई और ओघ में जो कथन किया था उससे और इससे सिमिलैरिटी है, इसलिए सूत्र में ओघ यह पद कहा। विशेष बात यह है कि वैक्रियक समुद्घातगत तीनों अशुभ लेशा वाले मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यक लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। वो भी किस तरह से वो उन्होंने पहले अपने को बताया था समझाया था। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे हम। ये तो मिथ्यादृष्टियों की बात हुई, कृष्ण कृष्णादि तीन अशुभ नहीं। अब जो अन्य गुणस्थान है कौन सा दूसरा तीसरा चौथा उसकी बात करेंगे। शासन सम्मादिट्ठी सम्मामिच्छादिट्ठी असंजत सम्मादिट्ठी ओगम तीनों अशुभ लेशा वाले, ये कंटिन्यूटी है ना क्योंकि अशुभ लेशाओं की बात चल रही। सूत्र में नहीं लिखा है परंतु पहले अशुभ लेशाओं का मिथ्या तो गुणस्थान उन्होंने बता दिया मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, अब रिमेनिंग गुणस्थान बता रहे। तीन अशुभ लेशा वाले सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव ओघ के समान लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। तीनों अशुभ लेशा वाले उक्त तीनों गुणस्थानवर्ती जीवों के स्वसंभव पदों की अपेक्षा, स्वसंभव यानी जो जहां पॉसिबल है वो, ऐसा क्यों लिखा? इसमें है कोई पद का डिफरेंस होगा? देखो जैसे सम्यक मिथ्यात्व में मारणांतिक पद नहीं होगा, उपपाद पद नहीं होगा, इसलिए स्व संभव पद कहा? स्व संभव पदों की अपेक्षा सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में रहने से और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुण क्षेत्र में रहने से ओघ के साथ सदृशता पाई जाती है, इसलिए उनके क्षेत्र के ओघपना सिद्ध हुआ। यानी ओघ के साथ इसकी क्या समानता है वो बता रहे हैं। किंतु विशेष बात यह है कि मारणांतिक समुद्घातगत और उपपाद पदगत कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले असंयत समय दृष्टि स संख्यात होकर के भी क्या कहते हैं, मारणांतिक करने वाले और उपपाद, वो क्या है, असंयत समय दृष्टि है, कितने वो संख्यात है, फिर भी मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उनके मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पदगत दंड का आयाम असंख्यात योजन पाया जाता है। यानी इन गुणस्थानों के साथ या तो मारणांतिक समुद्घात करेंगे, उस कौन सा है, दूसरा और चौथी की बात है ना, तीसरे में तो होती ही नहीं है, तो दूसरा मरकर जहां अभी नरक में तो नहीं जाएगा, तो देवों में जा सकता है, तिर्यंच में, मनुष्य में, उसकी अपेक्षा लेना। और असंयत तिर्यंच मनुष्य मरकर देव में जाएंगे या देवों के मरकर मनुष्य में आएंगे, तो उसकी अपेक्षा से ये असंख्यात योजन हो सकता है। ये सॉरी बराबर है, बराबर है, हाँ अशुभ लेशा है, आपकी बात बराबर है, देवों से नहीं आएंगे यहाँ, अशुभ लेशा की बात हम भूल गए ख्याल आया, हाँ। तो असंयत सम्य दृष्टियों में कौन हो गए कि कृष्ण लेशा के साथ या कृष्णादि तीन लेशा के साथ सम्य दृष्टि कौन हो गए, तो नरक से आकर मनुष्य में जन्मने वाले, उनकी अपेक्षा बराबर है, नहीं मनुष्य जो है असंयत सम्य दृष्टि मरकर अब तिर्यंच में जन्मने वाले हैं, तो कौन जन्मेंगे, हमने पहले देखा था भोग भूमि में क्षायिक या कृतकृत्य वेदक, हाँ तो उनमें तो अशुभ लेशा होती है, तिर्यंचों में जन्मने वालों की अशुभ लेशा होती है, हमने पहले देखी थी, कापोत होगी ख्याल है ना, हाँ तीनों होगी मेरे ख्याल, और नरक में वाला वो तो कापोत में ही जाएगा, पहले नरक में, इसलिए वो असंख्यात गुणा। दूसरे दंड का अर्थ ख्याल में आया, हाँ जैसे पहले मोड़ तक वो पहला दंड, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक दूसरा दंड, उसकी अपेक्षा से लिए, क्योंकि जब मारणांतिक समुद्घात के बाद उपपाद होगा तो पहला दंड का समेट लेता है वो, और अभी दूसरा दंड बाकी है वहां, तो उसकी अपेक्षा उपपाद का क्षेत्र बढ़ जाता है। अब शुभ लेशाओं की बात करेंगे, तेउलेशीय पम्मलेशीयेषु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव अपमत्त संजदा केवड़ी खेते लोगस्स असंख्ये जदि भागे। तेजोलेशा और पद्मलेशा, शुक्लेशा को यहां नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों लेशा कहां से कहां तक है, एक से सात तक, और शुक्ल लेशा आठ से नहीं लेना, एक से तेरह तक, हाँ इसका अर्थ देखते देखो। तेजो लेशा वाले और पद्म लेशा वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त संयुक्त गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात गत तेजो लेशा वाले मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीनों लोकों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। मारणांतिक समुद्घात गत तेजो लेशा वाले मिथ्यादृष्टि जीवों का क्षेत्र भी इसी प्रकार है, वो भी असंख्यात गुणे क्षेत्र में। विशेष बात यह कहना चाहिए कि वे तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार उपपाद पदगत तेजो लेशा वाले मिथ्यादृष्टि जीवों का क्षेत्र जानना चाहिए। तेजो लेशा वाले ने स्वर्ग से मरकर यहाँ नीचे आने वाले होंगे मनुष्य में, या मनुष्य तिर्यंच मरकर स्वर्ग में जाने वाले, समय दृष्टि हो तो तेजोलेशा में जाएगी वो। यहां तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, तो मिथ्या दृष्टि भी जिस जिस स्वर्ग में जहाँ जाना है ना, जैसे पहले स्वर्ग में जाने वाले हैं वो तेजो लेशा के साथ जाएंगे। मिथ्या दृष्टि मरण की जो लेशा होती है, शुभ लेशा है, तो कहाँ कहाँ उत्पन्न होगा उसकी बात हमने पहले देखी थी। तो उसकी अपेक्षा यहाँ तेजो लेशाओं का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर अपवर्तना के स्थापित करते समय सौधर्म कल्प की जीव राशि को स्थापित कर लिखा नहीं है, सौधर्म की मुख्यता से लेना है, क्योंकि वहां तो नियम से अपर्याप्त हो या पर्याप्त हो वो तो पीतलेशा तेजोलेशा ही होती है। वहां पर भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में तो कृष्णादि तीन लेशा होती है अशुभ, और फिर बाद में वो तो पीते हो जाती है। जीव राशि को स्थापित कर उसमें पल्ल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण अपने उपक्रमण काल से भाग देने पर, उपक्रमण काल यानी निरंतर उत्पत्ति का काल, एक समय में उनमें उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, यानी टोटल जीव राशि सौधर्म की डिवाइडेड बाय उसका उपक्रमण काल, तो उसमें एक समय में उत्पन्न होने वाले जीव हो गए। पुनः एक दूसरा पल्ल्योपम का असंख्यात भाग भागहार रूप से स्थापित कर एक राजो प्रमाण आयाम वाली उपपाद पद को प्राप्त जीव राशि का प्रमाण होता है, यानी एक राजु वो द्वितीय दंड वाला जो होगा उसकी अपेक्षा यहाँ लिया है। पुनः उसे संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण राजुओं से गुणित करने पर उपपाद क्षेत्र का प्रमाण होता है। पहले राशि निकाली, राशि में तो सभी वो विग्रह करके उपपाद नहीं करेंगे, तो विग्रह करके उपपाद वालों का क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए उसकी फिर पल्ले का असंख्यात भाग कर उसकी राशि निकाली, और उसमें से भी जिनका एक राजू लगभग आयाम है उसकी राशि निकालने के लिए और एक बार पल्ले का असंख्यात भाग से भाग दिया, क्योंकि कोई कोई तो दूर का मारणांतिक करते, कोई नजदीक का करते, तो यहाँ एवरेज एक राजू वाले उनको संख्या निकालनी थी तो उनकी लिमिटेड संख्या है, उसके लिए फिर दोबारा भाग दिया था। सौधर्म की मुख्यता से यहाँ ये बात है, और उससे संख्यात प्रतरांगुल से गुणा किया तो टोटल हमको उस अवगाहना से गुणा किए तो उसके टोटल क्षेत्र आ जाएगा उपपाद वाला। यहाँ पर अपवर्तना जान करके करना चाहिए। गुणस्थान प्रतिपन्न तेजो लेशा वाले जीवों का क्षेत्र ओघ क्षेत्र के समान है। मिथ्या दृष्टियों की बात हो गई, अब दूसरे से लेकर सातवें तक के जैसे गुणस्थानों में हमने देखा था वैसा इनका भी होगा क्षेत्र। स्वस्थान स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात गत पद्मलेशा वाले, अभी पद्मलेशा की बात चल रही, तेजोलेशा की बात कह दी उन्होंने, पद्मलेशा वाले मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तिर्यंच राशि की प्रधानता है। वैकृत समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद को प्राप्त पद्मलेशा वाले मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सानत कुमार महेंद्र देव राशि की प्रधानता है। ये पद्मलेशा होती है वहां, इसलिए सासादन सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती पद्मलेशा वाले जीवों का क्षेत्र ओघ के समान है, यानी उस गुणस्थान में कितने जो चौथे तक तो सभी लेशाएं हैं, तो प्रत्येक लेशा वालों का जो प्रोपोर्शन होगा, और पांचवे के बाद तो तीन लेशा है, तो उसमें प्रत्येक का प्रोपोर्शन अलग अलग राशियों का होगा। हाँ, आपका प्रश्न है स्वर्ग में मरते समय कौन से पद्मलेशा वाले मरकर जाएंगे कि एकेंद्रिय में नहीं जाएंगे? मेरा ऐसा प्रश्न है, पद्मलेशा वाले जीव एकेंद्रियों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मरकर? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, क्या क्या फिर? पहले पहले स्वर्ग से या भवनत्रिक से जा, वहां से ही एक इंद्रिय में जाते हैं। तो मेरा प्रश्न, पद्म वाले जाते हैं कि नहीं? तो पद्म वो सानत कुमार महेंद्र और ऊपर के होंगे। हाँ, वो नहीं जाएंगे। तो अशोक अरविंद भाई का प्रश्न ऐसा था, एक इंद्रियों में जाने वाले, अभी तेजोलेशा वाले तो जाते हैं एक इंद्रियों में, है ना? तो एक इंद्रियों में जाने वाले, और एक इंद्रियों में तो हमने अशुभ लेशा देखी थी, तो क्या उनकी लेशा टर्न होती है? तो होती है, इसके हमने धवला पुस्तक में ही पढ़ा था पहले। हाँ, मिथ्या दृष्टियों में तो लेशा चेंज होती है, अशुभ लेशा हो जाती है, परंतु सम्यक दृष्टियों की तो वही शुक्ल लेशा, अभी कोई ग्रेवेक से आए तो उनकी तो शुक्ल लेशा रहेगी। हाँ, तिर्यंच में भी जावे, तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों में भी वो तो अशुभ लेशा ही होती है। शतार सहस्रार तक के वो तिर्यंच गति का बंद करते ना, तिर्यंच गति तिर्यंच आयु कहाँ तक के जीवों के बनती है, वहां से आने वाले की, शतार सहस्रार तक के। हाँ, सदर चौक, हाँ सदर चौक का नाम लेते हो तो आपको चार बातें बतानी पड़ेगी, बोलो अभी। सदर चौक ने शतार के वो चार बातें, उनके वहां तक बंद है उसका, वो आगे नहीं है। कौन सी चार बातें हैं? तिर्यंच गति में जाते हैं तो उस संबंधी चार प्रकृतियां होनी चाहिए। हाँ, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और निज गोत्र है। और उद्योत तो ऑप्शनल है, तिर्यंच में जाने वाले उद्योत को भी बांध सकते हैं। देखो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ तक आए हम? हाँ, उपपद को प्राप्त पद्मलेश वाले मिथ्या दृष्टि जीव, ये दूसरे पैराग्राफ में पांचवी लाइन, ये हुआ था। हाँ, सानत कुमार महेंद्र जीव की प्रधानता, ये भी पढ़ा था, यानी मिथ्या दृष्टि की बात हो गई थी अपनी। नीचे से दूसरी लाइन, उसमें सासादन समय दृष्टि आदि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवन से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती पद्मलेशा वाले जीवों का क्षेत्र ओघ के समान है। जैसे गुणस्थानों में हमने देखा था क्षेत्र, वैसा इनका भी है। अब शुक्ल लेशा वालों की बात करेंगे। सुख लेसी येसु मिच्छा दिट्ठि पहुड़ी जाव क्षीण कसाय वीदराग चदुमत्था केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। तो शुक्ल लेशा में सहयोगी को क्यों छोड़ा? हाँ, क्षेत्र की बात है ना, उनमें वो अलग है कथन, लोक के असंख्यात विभाग में या असंख्यात बहुभाग में या पूरे लोक में, इसलिए सहयोगी को छोड़कर बात की है। तो शुक्ल लेशा वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती शुक्ल लेशा वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं। चूंकि शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि जीव पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है, इसलिए वे स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैक्रियक समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। सासादन समय दृष्टि आदि शेष गुणस्थानवर्ती शुक्ल लेशा वाले जीवों का क्षेत्र ओघ के समान है। विशेष बात यह है कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद इन दोनों पदों में शुक्ल लेशा वाले जीव संख्याती होते हैं। तो क्षीण कषाय में मारणांतिक और उपपाद होगा कि नहीं होगा? हाँ, मारणांतिक भी नहीं है, रूपोपाध भी नहीं, यानी क्षपक श्रेणी में तो होगा ही नहीं। तो यहाँ लिखा तो है, तो उसमें जहाँ पॉसिबल है उसको समझना, ख्याल है ना। ऊपर तो इतना लिखा था, नवरी मिच्छा दिट्टि पौड़ी सौ गुण ठाणेशु मारणंती उपवाद पदेशु जीवा संखेजा चैव, यानी जहाँ मारणांतिक और उपपाद पद है उसकी बात है। यानी वो ट्रांसलेशन करते समय क्षीण कषाय गुणस्थान तक लिखा है, ऊपर तो उन्होंने सर्व गुणस्थानों में लिखा है, सर्व गुणस्थानों में जहाँ मारणांतिक और उपपाद है उसकी बात है। उन्होंने तो खाली सभी गुणस्थानों में इतना ही लिखा था। अब हम आगे पढ़ेंगे 76। सजोगी केवली ओगम, यहाँ शुक्ल लेशा के प्रकरण में सहयोगी को लिया है, तो वही तो एक लेशा होती है उनकी, इसलिए जो सामान्य से ओग का कथन है वही यहाँ पर होगा। शुक्ल लेशा वाले सहयोगी केवली का क्षेत्र ओग के समान है, यह सूत्र सुगम है। शंकाकार, जिस प्रकार कषाय मार्गणा में क्षेत्र प्ररूपणा करते समय अकषायी जीव कहे गए हैं, उसी प्रकार यहाँ लेशा मार्गणा में अलेश्य जीवों का कथन क्यों नहीं किया गया? ये अलेश्य कौन कौन होते हैं? आयोग केवली और सिद्ध भगवान। हाँ, समाधान, ऐसी आशंका करने पर कहते हैं, जिस मार्गणा में द्रव्य प्रधान है उस मार्गणा में तो वैसा कहा गया है, वहां अकषायी गुणस्थान भी ज्यादा थे ना, 11, 12, 13, 14, किंतु जिस मार्गणा में पर्याय प्रधान है उस मार्गणा में वैसा नहीं कहा गया, किंतु परंतु लेशा मार्गणा यहाँ पर्याय प्रधान कही गई है, इसलिए इस मार्गणा में अलेश्य जीव नहीं कहे गए हैं, यानी लेशा की मुख्यता है इसलिए अलेश्यों को यहाँ नहीं कहा गया। इस प्रकार लेशा मार्गणा समाप्त हुई। अब आगे भव्य मार्गणा, कितनी मार्गणा हो चुकी पता है? हाँ बोलो। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, हाँ हाँ, रेशा, और अभी भव्य, और कौन सी रहेगी? सम्यक्त्व, संगी और आहार। हाँ, देखो अब 77 नंबर का सूत्र, भवियानुवादेन भवसिद्धियेषु मिच्छादिट्ठि पौड़ी जाव अजोगी केवली ओघम। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य सिद्धिक जीवों में, देखो भव्यों को भव्य सिद्धिक या भव्य सिद्ध कहते हैं और अभव्यों को अभव्य सिद्ध कहते हैं, उन जीवों में भव्य सिद्धिक जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र ओह क्षेत्र के समान है। तो भव्य जीव कितने क्षेत्र में रहते हुए लोग के? हाँ, पूरे लोक में, क्योंकि कितने ही भव्य निगोद में पड़े ना, नित्य निगोद में भी, सूक्ष्म निगोद में भी। तो भव्य जीवों में गुणस्थान कौन कौन से हैं? 1 से 14, और अभव्यों में एकमात्र। हाँ, यह संपूर्ण ही सूत्र मूल ओग प्ररूपणा के समान है, इसलिए मूल ओग पर्यायार्थिक नहीं की प्ररूपणा को प्राप्त होता है, अर्थात भव्य जीवों का क्षेत्र ओघ में कहे गए क्षेत्र के समान ही है। यानी वो हर एक गुणस्थान का जो हमने पहले क्षेत्र देखा था वैसा यहाँ भी जानना। अभव सिद्धियेषु मिच्छादिट्ठि केवड़ी खेत्ते सव्वलोय, अभव्य सिद्धिक जीवों में मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सर्वलोक में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद को प्राप्त अभव्य सिद्धिक जीव सर्वलोक में रहते हैं। विहारवत स्वस्थान और वैक्रियक पदस्थित अभव्य सिद्धिक जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग में, क्योंकि देखो ना, विहारवत तो त्रसों को होगा और वैक्रियक भी वो बादर पर्याप्तों को, वायु का एक उसको भी होगा, पर अन्य तिरियंच और मनुष्य या देवनार के में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। शंकाकार पूछता है, यह कैसे जाना कि विहार वस्वस्थान और वैक्रियक समुद्घातगत अभव्य जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग में और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं? ये आपने कैसे, क्योंकि अभी जो त्रस है उसमें भी अभव्य और भव्य दोनों हैं, तो आपने ये प्रमाण कैसे निकाला, ऐसा उसका कहना। समाधान, त्रस राशि का आश्रय करके कहे गए बंध संबंधी अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार के सूत्रों से यह जाना जाता है। ये तो अल्प बहुत्व द्वार आगे आएगा, अभी तो अपना क्षेत्र का चल रहा है, सत संख्या और क्षेत्र तक आ गए हम, है ना। फिर स्पर्शन होगा, काल होगा, अंतर होगा, वो बाकी सब बातें अल्प बहुत्व आदि, वह इस प्रकार है। वहां क्या कहा है वो अभी बता रहे। ध्रुव बंधक जीव सबसे कम है, उनसे सादी बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं। ये ध्रुव बंधक क्या है? हाँ, जिसको बंधक यानी हमें बंध करने वाले, हाँ, तो हमेशा जिनका ध्रुव है बंध, वो कहते हैं ध्रुव बंधक जीव सबसे कम है, उनसे सादी बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं। सादी बंधक यानी सादी यानी जिसको बिगिनिंग है। देखो हम कहेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। ध्रुव बंधक जीव सबसे कम है, उनसे सादी बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं, उनसे अनादि बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं, और उनसे अध्रुव बंधक जीव विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? तो ध्रुव बंधकों से ही सादी बंधकों की राशि के प्रमाण से अधिक है। तो ध्रुव बंध भी यहां तो एक इंद्रियों की अपेक्षा से विशिष्ट प्रकृतियों का हमेशा जो बंध करते आए। देखो अभव्यो में क्या होगा, उनका बंध तो कभी मिटेगा ही नहीं, तो अनादि अनंत बंध चालू ही रहेगा उनका, बराबर। तो अभव्य कम है भव्य, उनसे ये बात बता रहे। आपका प्रश्न है ध्रुव बंधक कम कैसे है? हाँ, जब तक वो भव्य जीव भी गुणस्थानों की परिपाटी से आगे चलेंगे नहीं, तब तक उनको भी ध्रुव बंधक होगा, क्या लें? हाँ, अभी ये तो अल्प बहुत्व की बात, वहां पर हमको डिटेल में समझेगी ये क्यों ये ऐसा कहा है, क्योंकि अपना तो अल्प बहुत्व का प्रकरण अभी यहाँ पर नहीं है। हमको खाली ध्रुव बंध किसको कहना, अनादि बंध, सादी बंध, ये क्या बातें होती है। देखो ऐसे तो हम देखते कि प्रत्येक जीव जो है अनादि से बंधता ही आया है, कर्मों का बंधन करके ही आया है, यानी कोई बिना बंध का होगा ऐसा भी बात ही नहीं है, अनादि से उसका बंध चल रहा है ना, तो उसको हम बंधक कहेंगे। परंतु विशिष्ट प्रकृतियों के बंध की अगर बात करेंगे, तो विशिष्ट प्रकृति जो ऐसे ध्रुव बंधने वाली, जो ध्रुव बंधी प्रकृति होती है, निरंतर जिनका बंध चलता ही रहता है, उन प्रकृतियों को ही ध्रुव प्रकृति कहते हैं, ध्रुव बंधी प्रकृति। अध्रुव प्रकृति कुछ अलग है कि उसमें से या तो बनती है या नहीं बनती है, ऑप्शनली बनती है, नहीं मैं समझे आप। देखो जैसे ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, अंतराय की 5, मिथ्यात्व 16, कषाय भय जुगुप्सा, तेजस कारमाण, और फिर निर्माण, अगरु लघु उपघात और स्पर्शादि 4, ये 47 प्रकृतियां जो है, हाँ, निरंतर बंदी, ध्रुव बंदी जिसको कहते हैं। जब तक उन की विच्छित्ति नहीं होगी अपने अपने गुणस्थान तक, तब तक अनादि से बनती चली आई है, उनका बंध कभी मिटा ही नहीं है। पांचों ही ज्ञानावरण का बंध कब तक होगा? दसवें के एंड तक बंद की बात है, उदय की नहीं है ना। तो अभी उसको तो दसवें तक तो ध्रुव बंद था, अभी कोई जो उपशम श्रेणी चढ़ा और उतरा, ग्यारहवें में गया तो उसको ज्ञानावरण का बंद नहीं था, अकेला एक सातावेदनीय का बंद था, और ग्यारहवें में जाकर फिर उतरते समय दसवें में आया, तो ज्ञानावरण का उसका बंध शुरू हुआ, तब उसको हम उसको शादी कहेंगे तब। मगर जब तक विच्छित्ति नहीं होती है तब तक उसको ध्रुव बंदी कहेंगे। ख्याल है ना? जैसे दर्शनावरण में जो है स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, उसका बंध कहाँ तक है? तो दूसरे गुणस्थान तक ही है। दूसरे गुणस्थानों के ऊपर उनका बंध नहीं होता। जब कोई जीव सम्य दर्शन प्राप्त करता है तो स्त्यान वृद्धि आदि वो तीन कहने, वो जो अन्य भी 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया है, फिर वो मिथ्यात्व में आया, फिर दोबारा वो चालू हो जाता है, तो उसको हम साधी बंधक कहेंगे। विशिष्ट प्रकृतियों के, वो उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से उसको हम साधी बंधक कहेंगे, उन प्रकृतियों का। और ऐसे भी कितनी प्रकृति है, जैसे वेदनीय कर्म कहाँ तक बनता है? तो हम कहते हमेशा बनता है, और केवल के 13वें तक बनता है। परंतु उसमें हम साता असाता की बात करेंगे तो या साता बंधेगा या असाता, मिथ्या दृष्टि को भी साता बंधेगी या असाता, तो ऑप्शनल हो गई ना, तो उसको अध्रुव प्रकृति कहेंगे। तो उनमें वो सादी बंध भी कह सकते हम कि कुछ काल तक वेदनीय साता वेदनीय हुआ, फिर वो असाता का शुरू हुआ, तो उसमें वो अध्रुव प्रकृति कहलाते हैं। यानी कर्मकांड में हमने टेबल आपको याद होगा तो देखो, उसमें तो हमने देखा था कि ये तो मैंने अभी 47 गिनाई आपके, ये तो ध्रुव बंदी है, निरंतर बंधने वाली, और कभी कभी बंधने वाली तो 73 प्रकृति थी। उसमें से भी 11 प्रकृति ऐसी थी कि जो कभी किसी को बनती है विदाउट प्रतिपक्ष, बंधेगी तो बंधेगी विशिष्ट गुणस्थानों में, नहीं बंधेगी नहीं बंधेगी। जैसे आयु कभी कभी बनती है, एक अंतर्मूर्त तक बनती है, लगातार तो बनती नहीं है, और वहाँ को ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि कभी थोड़े टाइम के लिए मनुष्यायु बंधी, फिर थोड़े के टाइम के लिए देवायु बंधी, ऐसा नहीं है। जैसे गति नाम कर्म में तो ऐसा है, गति नाम कर्म निरंतर बनता है, परंतु उसमें ऑप्शन है, चार जैसे परिणाम है, चार गति में से कोई एक गति बंधेगी, उसको प्रतिपक्ष वाली कहते हैं। और ये जो 11 प्रकृति जो है वो अप्रतिपक्ष वाली है। अब उसमें आहारक आहारक अंगोपांग है, तीर्थंकर है, फिर चार आयु है, हा? और परघात उच्छवास आतप और उद्योत, ये 11 प्रकृति जो है वो कभी कभी बंधेगी। आयु वगैरह तो अंतर्मूर्त तक ही बंधेगी, परंतु ये उपघात वगैरह तो एक समय के लिए भी बंधेगी, बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं, ऐसा। वो अभी आगे की बात है ना, ये पूरा ही अल्प बहुत वहां बताएंगे। अब ये ध्रुव अध्रुव जो की बात है ना, तो अभी हम प्रकृतियों की अपेक्षा बताई, वहां तो कितना यानी स्थिति की अपेक्षा भी बताए। उत्कृष्ट का स्थिति का बंध है, अनुत्कृष्ट स्थिति का बंध है, जघन्य स्थिति अजघन्य स्थिति, उसकी अपेक्षा भी ये सादी अनादि ध्रुव अध्रुव ये लगते हैं। तो ये तो पूरा विषय ही अलग है। हम यहाँ प्रकृति अपेक्षा अनादि किसको कहना, सादी किसको कहना, ध्रुव किसको कहना, अध्रुव किसको कहना, उसकी बात है। और वो 73 में से अभी तो हमने 11 देखी, अब कितने रहे, 62 प्रकृति, जिनको प्रतिपक्ष होता है, या तो ये बंधेगी या तो वो बंधेगी। कैसे? जैसे वेदनीय में साता या असाता, गोत्र में उच्च या नीच, और मोहनीय में मोहिनी की मिथ्या तो 16 कषाय भयुगुप्सा, तो हमने निरंतर बंधने वाले में ही, रिमेनिंग में हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, और तीन वेद में से कोई एक वेद बंधेगा, ये इनकी होगी। और नाम कर्म की 51 प्रकृतियां हैं, तो 51 प्रकृति में तो गति की चार है, इसमें चार में से कोई एक गति बंधेगी। जाति 5 है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार, ऐसे गति जाति। अब शरीर में आहारक आहारक अंगोपांग हमने निकाला था, तो फिर औदारिक औदारिक अंगोपांग और या वैकृक वैकृक अंगोपांग, ये ऑप्शन होगा, वो चार हो गए, गति जाति शरीर अंगोपांग। हाँ, 6 संस्थान 6 सहनन। हाँ, अब इसमें ये विहाय गति गति की है, तो गत्यानुपूर्वी भी लेना है, विहायो गति भी लेना है, दो में से एक कोई बंधेगी। इतने शरीर अंगोपांग, फिर अभी त्रस आदि वो जोड़ी लेना, त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त और प्रत्येक या साधारण, ये आठ ये हो गई। और फिर स्थिर या अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यशस्कीर्ति अयशस्कीर्ति, वो बारह हुई। कितनी हुई टोटल, कुछ रह गया क्या देखेंगे? बारह दह बावी संदह बत्तीस संदह बेचाली सनी नौ, हाँ बराबर आ गए। इक्यावन नाम कर्म की प्रकृति है, ये ऑप्शनल है। कोई गलत नहीं है, थोड़ा हमारा भी याद है कि नहीं देखेंगे ना। हाँ ये ऑप्शनल ही है, इसमें से कोई एक प्रकृति बनेगी। इसको अध्रुव भी कहेंगे, इसको सादी भी कहेंगे। कुछ काल तक ये बंद रहा था, फिर बंद हुआ, दूसरी गति बन रही। जैसे सुबह से शाम तक हम जैसे परिणाम करते हैं, तो अलग अलग गतियां भी बनती रहेगी इस तरह से, उस अपेक्षा से। इसको यहाँ वो अपेक्षा भले नहीं हो, यहाँ तो एकेंद्रियों में से जो त्रस में आए हैं उसकी बात चल रही है। तो एकेंद्रिय संबंधी विशिष्ट प्रकृतियां बनती थी, वो वही के वही बनने वाले जीव ज्यादा हो गए शायद। यहाँ अलग अपेक्षा है, इसको ध्रुव बंधक, जीवों की अपेक्षा इसको बंधक का। तो फिर शंकाकार पूछता है, त्रस जीवों में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही अभव्य सिद्धि जीव होते हैं, यह कैसे जाना जाता है? क्या प्रश्न पूछा कि त्रसों में अभव्य जीव पल्ले के असंख्यात वे भाग इतने ही होते हैं? उसका समाधान, पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र सादी बंधकों से ध्रुव बंधकों की असंख्यात गुणहीनता अन्यथा नहीं बन सकती। यानी सादी बंधक ज्यादा है और ये ध्रुव बंदी वाले असंख्यात गुणहीन हैं। इस अन्यथा अनुपपत्ति से, अन्यथा अनुपपत्ति ने नॉट अदरवाइज पॉसिबल, जाना जाता है कि त्रस राशि में अभव्य सिद्धिक जीव पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही होते हैं। ये तो अल्प बहुत्व द्वार में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी तो हमको इतना ही समझना है। त्रस राशि है उसमें अभव्य सिद्धिक जीव पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही होते हैं। फिर शंका, सादी बंध करने वाले जीव पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र होते हैं, यह कैसे जाना? तो कहते युक्ति से। वह युक्ति कौन सी है? कहते हैं, त्रस जीवों में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र सादी बंधक जीव होते हैं, क्योंकि वर्ष पृथक्त्व के अंतर से, वर्ष पृथक्त्व ने पृथक्त्व वर्ष है, बिटवीन 3 to 9 years, 3 से 9, उसको पृथक्त्व वर्ष कहेंगे। वर्ष पृथक्त्व के अंतर से त्रसकाय की स्थिति का पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र उपक्रमण काल पाया जाता है। हमने देखा उपक्रमण काल ने निरंतर उत्पत्ति होने का, जो कंटिन्यूअस जिसमें उत्पन्न होवे उतना काल, उसको उपक्रमण काल कहते हैं। तो उसमें अंतर कितना पड़ता है? पृथक्त्व वर्ष। मान लेते पृथक्त्व वर्ष तक कोई त्रसों में उत्पन्न नहीं हो, तो पश्चात लगातार त्रसकाय की स्थिति का जो पल्लोपम का असंख्यात भाग मात्र है वो उपक्रमण काल पाए जाता है। शंका, एकेंद्रिय जीवों में संचय को प्राप्त अनंत सादिक बंधकों में से जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण सादी बंधक जीव त्रस जीवों में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? मेरे ख्याल से सादिक बंधक यानी वो इतर निगोद को लिया, यहाँ सादी बंधक अनादि बंधक यानी वो, यानी ध्रुव बंधक यानी वो नित्य वाले, नित्य निगोद की बात करते होंगे, और सादी बंधक यानी वो जो चतुर त्रस में जाकर फिर निगोद में आ गए, उनकी बात होगी यहाँ। तो उनमें से ये जो फिर दोबारा वहां उत्पन्न हो गए, उनमें से कहते हैं जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण सादी बंधक जीव त्रस जीवों में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं, ऐसा उनका पूछना है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि सभी गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में आय के अनुसार ही व्यय पाया जाता है। जितने जीव उसमें उत्पन्न आएंगे उतने ही वहां से बाहर निकलेंगे। चूंकि एकेंद्रियों में आय का प्रमाण संख्याति है, इसलिए उनका व्यय भी उतना अर्थात संख्याति होना चाहिए। इसलिए सिद्ध हुआ कि त्रस राशि में सादी बंधक जीव पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। ये सादी बंधक का अर्थ ये निगोद की अपेक्षा से ही लेना चाहिए, इसे मुझे अभी तो लगता है। आगे चलकर और इसमें कुछ जानने को मिला तो हम जाएंगे अगले भागों में, देवला के आगे भागों में। इस प्रकार भव्य मार्गणा समाप्त हुई। अब सम्यक्तो मार्गणा की बात करेंगे। तो सम्यक्तो मार्गणा में मंजूबेन कितने भेद है? सम्यक्तो मार्गणा में 6 भेद है। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, औपशमिक सम्यक्तव, क्षायोपशमिक सम्यक्तव और क्षायिक सम्यक्तव। पहले यहाँ सम्यक दृष्टि की बात करेंगे। अब सम्मत्तानुवादेन सम्मादिट्ठि, यानी सम्यक दृष्टियों में कौन कौन है? तो खय सम्मादिट्ठि सु असंजत सम्मादिट्ठि पौरी जाव अजोगी केवली ओगम। सम्यक्तव मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में असंयत समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान है, यानी उन गुणस्थानों का जो क्षेत्र है उतना ही उनका होगा। द्रव्यार्थिक नय के प्ररूपण की अपेक्षा सूत्र प्रतिपादित यानी सूत्र में बताए हुए जीवों के क्षेत्र में ओघ क्षेत्र से कोई विशेषता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। द्रव्यार्थिक नय की जब प्रधानता से कहते कि लोक के असंख्यात भाग में ऐसा जो कहेंगे तभी की बात, इसलिए सूत्र में ओघ ऐसा पद कहा है। पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा में भी कोई विशेषता नहीं है, केवल यानी सम्यक दृष्टि तो सभी चौथे से आगे, अभी उसका जो भेद करेंगे क्षायिक आदि उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। केवल क्षायिक सम्यक दृष्टियों में संयता संयत गुणस्थानवर्ती जीवों के मनुष्य पर्याप्त संयता संयत तक ही होते हैं। अतः उनमें संभव पदों की अपेक्षा, उनमें संभव नहीं उनमें पॉसिबल पदों की अपेक्षा ही क्षेत्र प्ररूपणा करना चाहिए। देखो संयता संयत गुणस्थान ओघ में तो हमने तिर्यंच और मनुष्य दोनों में देखा था, और तिर्यंचों की अपेक्षा उनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो जाता है। परंतु क्षायिक समय दृष्टियों में संयता संयत कौन से गति में हो गए? एकमात्र मनुष्य में, क्योंकि तिर्यंचों में क्षायिक तो हो सकते हैं भोगभूमि में, परंतु वो वहां पांचवा गुणस्थान नहीं है। यानी क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच चौथे गुणस्थान वाले हो सकते, इसलिए यहाँ संयता संयत को अलग निकाला। तो उनमें जो जो पॉसिबल है उसकी अपेक्षा ही क्षेत्र प्ररूपणा करना चाहिए। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद इन दो पदों में वर्तमान यानी दो पदों में रहने वाले असंयत समय दृष्टि गुणस्थानवर्ती क्षायिक समय दृष्टि जीव संख्यात ही होते हैं, शेष सूत्र का अर्थ सुगम है। संख्यात ही होगी ना ये उपपाद वाले या उसमें, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य मरकर अन्य कहीं गए हो तो क्षायिक सम्यक्त के साथ वापस उसमें मनुष्य में भी आएंगे बाद में, तो ये सब संख्यात ही हो गए। अब सहयोगियों की बात करेंगे। सजोगी केवली ओगम, सहयोगी केवली भगवान का क्षेत्र ओघ कथित क्षेत्र के समान है। अपना यहाँ तो क्षायिक समय दृष्टियों का प्रकरण चल रहा है, तो सहयोगी तो क्षायिक ही होते हैं, तो जो अभी तक हमने सहयोगियों की जो प्ररूपणा देखी है वो यहाँ पर भी समझना। सहयोगी केवली गुणस्थान की पूर्ववर्ती गुणस्थानों के साथ क्षेत्र की अपेक्षा प्रकर्षता से प्रत्याशक्ति का अभाव है, क्योंकि वो समुद्घात की अपेक्षा पूरे लोक में भी व्याप्त है, तो अन्य गुणस्थानों के साथ इनकी सिमिलैरिटी नहीं है, समानता नहीं, इसलिए यह पृथक सूत्र बनाया गया है। शेष सूत्र का अर्थ सुगम है। सुगम है ना, भी आसानी से समझ में आ सकता है। अब 81 नंबर का वेदक सम्य दृष्टियों की बात करेंगे। वेदक सम्मादिट्ठिसु असंजद सम्मा दिठी पहुड़ी जाव अपमत संजदा केवड़ी खेते लोगस्स असंख्य जदि भागे। वेदक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती वेदक सम्यक दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। यहाँ पर ओघ में कही गई पर्यायार्थिक नय संबंधी क्षेत्र प्ररूपणा संपूर्ण पदों की अपेक्षा सर्व गुणस्थानों में प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। जो हम गुणस्थानों में अलग अलग पद देखे थे वो यहाँ भी समझना, जैसे चौथा वाला होगा तो वहाँ भी तेज समुद्घात नहीं होगा, आरक समुद्घात नहीं होगा, केवली समुद्घात नहीं होगा, तो जहाँ जो संभव है उसको जानना। अब 82 नंबर, उसम सम्मादिठीसु असंजत सम्मादिठी पहुड़ी जाव वसंत कसाय वीदराग छदुमत्था केवड़ी खेते लोगस्स असंख्य जदि भागे। उपशम सम्य दृष्टि जीवों में असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उपशम सम्य दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थानवर्ती उपशम सम्य दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में और मानुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। चौथे गुणस्थान वाले देव नारकी मनुष्य तीरें सब हो गए। हाँ, वेदक में, हाँ आपका प्रश्न है वेदक समय दृष्टियों में अप्रमत्त तक क्यों लिया, आप कहेंगे पंजुबे? पहले पहले मंजुबेन बता रहे, हाँ तो श्रेणी में कौन सा होगा, श्रेणी में कौन सा सम्यक तो होगा, द्वितीय उपशम होगा या शायिक सम्यक तो होगा। हाँ आपको मालूम है ये, आगे तो वेदक सम्यक तो यानी क्षयोपशम सम्यक तो आगे के गुणस्थानों में है ही नहीं, क्योंकि उस सम्यक तो के साथ श्रेणी चढ़ने जैसे विशुद्धि नहीं होती। हाँ उसमें वो कुछ दोष है ना, चलम लगार दोष, सम्यक प्रकृति का उदय है वहां पर। देखो ये असंख्यात गुणी क्षेत्र में रहते, चौथी लाइन, मानांतिक समुद्घात और उपपाद इन दोनों पदों में भी यही उक्त क्षेत्र आलाप जानना चाहिए। अब यहाँ मानांतिक समुद्घात होगा कि नहीं होगा उपशम समय दृष्टियों में, और उपपाद भी होगा कि नहीं होगा, मानांतिक होगा, कब होगा? द्वितीय उपशम वालों को होगा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में मरण होता ही नहीं है, तो मरण नहीं होगा तो उसके साथ उपपाद होने का सवाल नहीं। यह उपशम सम्य दृष्टियों में जो मारणांतिक और उपपाद की बात की है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की बात की है, तो उनके गुणस्थान कौन से हो गए द्वितीयोपशम के? चार से ग्यारह तक, क्योंकि ऊपर से चढ़कर वापस आए चौथे तक जा सकता है वो है। विशेष बात यह है कि उन दोनों पदों में वर्तमान जीव संख्यात ही होते हैं, वे तो संख्यात हो गए, क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरकर उपशम सम्यक्त्व के साथ असंयम भाव को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या संख्यात ही पाई जाती है। अब शंका, उपशम श्रेणी से उतरकर मरने वाले उपशम सम्य दृष्टि जीवों के अतिरिक्त शेष अन्य उपशम सम्य दृष्टि जीवों का मरण क्यों नहीं होता, यानी प्रथम उपशम वालों का क्यों नहीं होता, ऐसा कहते हैं। समाधान, स्वभाव से ही नहीं होता, यानी ऐसा स्वभाव ही है कि प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं होता। आपको शायद पता नहीं होगा प्रायोगिक लब्धि से ही लेकर आयु का बंध भी रुकता है चारों आयुओं का, जब तक प्रथमोपशम समय तो प्राप्त करके पूरा नहीं होवे तब तक आयु का बंध भी नहीं होगा, और यह करण लब्धि में और उपशम समय के काल में मरण भी नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा करण लब्धि प्राप्त करने वाला नियम से प्रथमोपशम करेगा। ऐसा कोई सुना है कि विग्रह गति में भी करण लब्धि चल रही है और वहां जाके उपशम, ऐसा नहीं सुना आपने? ये ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, कहाँ कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, कहाँ मरण होता है, कहाँ नहीं मरण होता है, ये सब बातें ये कर्म के प्रकरण में हमने देखी भी थी और आगे आएगी भी है इसमें। इसी प्रकार से संयता संयत गुणस्थानवर्ती उपशम समय दृष्टि जीवों का क्षेत्र भी जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके उपपाद पद नहीं होता, मारणांतिक को होगा उपपाद पद नहीं होगा, उसके साथ कोई पांचवें गुणस्थान के साथ जन्मेगा नहीं। विग्रह गति में होता है ना उपपाद पद, वहां तो पांचवा गुणस्थान होता ही नहीं है। शेष गुणस्थानवर्ती उपशम समय दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघवर्णित क्षेत्र के समान है। विशेषता केवल इतनी है कि प्रमत्त संयत के उपशम सम्यक्त के साथ तेजस समुद्घात और आहार समुद्घात नहीं होते। आपको कोई मालूम है क्यों नहीं होता? आप प्रेरणा बिना आपको पता है? हाँ हाँ, चार बातें एक साथ नहीं होती है। कौन कौन सी चार बातें? हाँ, प्रथम उपशम सम्यक्त, मन परे ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, आहारक। हाँ, क्या कहते? द्वितीय उपशम कर सकता है ऐसा कहते हैं। हाँ, उपशम सम्यक्त के साथ ही उन्होंने नहीं ऐसा किया। हमने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका द्वितीय उपशम को भी रूल आउट किया था वहां पर। हाँ, क्योंकि वो तो उपशम सम्यक्त हुआ है तो उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, उसको श्रेणी चढ़ने का ही पुरुषार्थ होगा। वो छठे में आकर वो कहीं आर समुदाय तेजस समुद करने का वो वहां सवाल नहीं है, ये तो श्रेणी चढ़ेगा। अब 83 नंबर का सूत्र, शासन सम्मादिट्ठी ओगम। शासन सम्यक दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओग के समान है। सम्मा मिथ्या दिट्ठी ओगम, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओग के समान है। ये हम सम्यक्त की अपेक्षा इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो ये गुणस्थान की बात है ना। वो मिथ्या दिट्ठी ओगम, मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओग के समान है। ये उक्त तीनों ही सूत्र सुगम है, इसलिए उनकी प्ररूपणा नहीं की जाती है। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा समाप्त हुई। अब संगी मार्गणा की बात करेंगे। सन्नियाणुवादेन सन्नीसु मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव खीण कसाय विदराग छदुमत्था केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। बारहवें गुणस्थान तक को लिया, आगे के लोगों को लेना के नहीं लेना? संगी मार्गणा में अर्यंतों को नहीं लेना, वो संगी असंगी से पार है। संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती संगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात, इन पांच पदों को प्राप्त संगी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार मारणांतिक समुद्घात और उपपाद इन दो पदों में वर्तमान संगी मिथ्यादृष्टि जीवों का भी क्षेत्र कहना चाहिए। विशेष केवल इतनी बात विशेष कहनी चाहिए कि ये तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, मारणांतिक और उपपाद वाले। सासादनादि शेष गुणस्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र ओघ क्षेत्र के समान है, क्योंकि वो तो संगी जीवों के ही होते हैं ना, वो आगे गुणस्थान आगे के, तो उसमें तो संगी जीव ही होते हैं। तो जो गुणस्थानों की प्ररूपणा है वही सासादनादि संगियों की प्ररूपणा है, क्योंकि ओघ क्षेत्र से सासाधनादि गुणस्थानों के संगी जीवों के क्षेत्र में कोई विशेषता नहीं है। अब असंगियों की बात करेंगे। असंगी केवड़ी खेते सवलोगे। देखो, असंगी कहने से केवल असंगी पंचेंद्रिय नहीं समझना, एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव असंगी ही है, तो पूरा लोक बताया। असंगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। इस प्रकार संगी मार्गणा समाप्त हुई। अब आहारक मार्गणा, आहार मार्गणा। आहारानुवादेन आहार येसु मिच्छादिट्ठी ओगम। आहारक जो है उसमें कितने गुणस्थान हैं? आहारक के गुणस्थान कौन कौन से? 1 से 13। और अनाहारक के 1, 2, 4 और 13 बस, और 14। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारक जीवों में मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। ये सभी जो एकेंद्रियादि आहारक है ना, पूरा लोक। मिथ्या दृष्टि जीवों में स्वस्थान आदि सभी पदों के साथ क्षेत्र संबंधी ओग प्ररूपणा से विशेषता नहीं है, इसलिए उनके क्षेत्र के ओगपना बन जाता है। अब अन्य गुणस्थानों की बात करेंगे। शासन सम्मादिट्ठि पहुड़ी जाव सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य जदि भागे। सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती ये आहारक करना, संगी लिखा है ना, संगी काटकर आहारक करना। आहारक जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। सयोगी केवली पूरे लोक में क्यों नहीं कहा? हाँ, जब वो प्रतर और लोक पूरण करते हैं तो अनाहारक होते हैं, और कपाट तक तो लोक के असंख्यात भाग में है, दंड कपाट तक। हाँ, इस सूत्र की पर्यायार्थिक नए संबंधी क्षेत्र प्ररूपणा ओघ क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। विशेष बात यह है कि आहारक जीवों के उपपाद पद शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय में कहना चाहिए, क्योंकि तभी जीव आहारक होता है। क्या कहना चाहते हैं? जब उपपाद कहेंगे तो कौन सा? जहां मिश्र का योग के साथ उपपाद होता है तभी तो आहारक कहलाएगा। जो कारमाण योग के साथ वो विग्रह गति में है, वो वाला उपपाद यहां नहीं लेंगे, वो अनाहारक में चला जाएगा। ख्याल आता है कुछ? जैसे विग्रह गति से जो जाता है तो उसका उपपाद कब है? पहले मोड़ के आगे जो दूसरा दंड है उसके हम उपपाद कहते हैं, परंतु तभी तो कारमण का योग होता है। हाँ, तो जब जिसका मिश्र का योग के साथ उपपाद है, रुजुगति से जाने वाले हैं, तो उसको हम आहारक कहेंगे, उपपाद में उसको लेना। आहारक सयोगी केवली के भी प्रतर और लोकपुरण समुद्घात नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में केवली के आहारकपने का अभाव है, यानी वहां वो भी कारमाण का योग है उनके। अर्थात प्रतर और लोकपुरण समुद्घात की अवस्था में सयोगी केवली भगवान अनाहारक रहते हैं। अब अनाहारकों का सूत्र कहेंगे 90 में। अनाहार येसु मिच्छादिट्ठी ओघम। अनाहारकों में मिथ्यादृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। अनाहारक है ना कारमाण का योग में, तो पूरे लोक में जाएंगे, कि एकेंद्रीय सब जगह जहाँ उत्पन्न होते हैं उनके विग्रह गति से जाने वाले, वो अनाहारक है तब। द्रव्यार्थिक नय की प्ररूपणा से अनाहारक मिथ्यादृष्टि जीवों का क्षेत्र ओग के समान होता है, किंतु पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा की अपेक्षा तो एक उपपाद पद ही होता है। ये बहुत अच्छी बात है। अनाहारकों का मिथ्या दृष्टियों में एक उपपाद पद ही होता है, शेष पद नहीं होते। मिथ्या दृष्टियों की बात है ना यहाँ, क्योंकि अनाहारक मिथ्या दृष्टि जीवों में स्वस्थानादि शेष सभी पद असंभव है, शेष सूत्र का अर्थ सुगम है, क्योंकि तो विग्रह गति की बात है ना, वो पर्यायतिकने की अपेक्षा कारमान का योग होगा तभी उनका वो उपपाद पद पाया जाएगा। अब अगला सूत्र, शासन सम्मादिट्ठी असंजत सम्मादिट्ठी अजो केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे, अनाहारक सासादन सम्य दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि और अयोगी केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं। देखो यहाँ तो सयोगी को अलग निकाला है, क्योंकि वो पूरे लोक में कहेंगे, फिर क्षेत्र की समानता बतानी है तो लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। पर्यायार्थिक न्याय संबंधी ये अनाहारकों की बात है, यानी विग्रह गति वाले जब मोड़ के पहले जहाँ कारमान का योग है, सीधी गति से जाने वाले तो डायरेक्ट आहारक ही रहते हैं, अनाहारक बीच में होते ही नहीं है। विग्रह गति से जाने वालों के लिए ये है सूत्र, अनाहारक दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, और अयोगी को तो वो तो है ही, अनाहारक ही है, ख्याल आता है। तो पर्यायार्थिक न्याय संबंधी क्षेत्र प्ररूपणा की अपेक्षा उपपाद को प्राप्त अनाहारक सासादन सम्य दृष्टि जीव, यहां भी उपपाद वालों को लिया, सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अनाहारक असंयत सम्य दृष्टि जीवों की क्षेत्र प्ररूपणा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए, यानी उसमें भी उपपाद को प्राप्त ऐसा कहेंगे, अनाहारक की बात है ना। अब अनाहारक अयोगी केवली भगवान सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग में रहते हैं, जहाँ वे विराजमान है। ऐसे जितने अयोगी भगवान होंगे तो उनकी तो अवगाहना की अपेक्षा हम उसको गुणा करेंगे, तो उनका तो मनुष्य क्षेत्र का संख्यातवा भाग हो जाएगा। अब 92 नंबर का, सजोगी केवली केवड़ी खेतते, ये कौन से सहयोगी की बात चल रही है, अनाहारक के सहयोगी की, हाँ, तो प्रतर और लोकपुरण में, सजोगी केवली केवड़ी खेतते लोगस असंख्य जेसु वा भागेसु सव लोगे वा, असंख्यात बहुभाग या पूरा लोक, अनाहारक सहयोगी केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात बहुभागों में और सर्वलोक में रहते हैं। हाँ कुछ कहा प्रतर समुद्घातगत सयोगी केवली जिन लोक के असंख्यात बहुभागों में रहते हैं, क्योंकि वे लोक के चारों ओर स्थित वात वलय के क्षेत्र को छोड़कर शेष समान लोक के सयल लोग खेतम समस्त चाहिए, शेष समस्त लोक के क्षेत्र को समापूरित करके स्थित होते। ऊपर क्या लिखा है देखेंगे, पज्जवट्ठी नयेण वो वाद गदा शासन समाधि चतुर्नम, नहीं यहाँ नहीं, नीचे नीचे सहयोगी केवली की, पदर गद सहयोगी केवली लोगस्य असंख्य जदु भागेशु होदि लोग पेरंत ठिद वाद वलय वदिरित सयल लोग खेतम, यानी सकल लोग क्षेत्र क्षेत्र को छोड़कर व्यतिरिक्त सयल लोग शेष समस्त या सकल समस्त चाहिए। समान नहीं चाहिए, समस्त चाहिए, शेष समस्त यानी पूरा रिमेनिंग पूरा, शेष समस्त लोग के क्षेत्र को समापूरित करके स्थित होते, यानी पूरे वो प्रसरते हैं ना, व्याप्त होते हैं। हाँ वात वाले को छोड़कर, ये हमने पहले वात वाले का घनफल निकाला था और उसको माइनस किया था पूरे लोक में से। पुनः लोकपुरण समुद्घात में वे ही सहयोगी केवली जिन सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि उस समय वे सर्वलोक को आपूरण करके स्थित होते हैं, आपूरण पूर्ण परिपूर्ण वो व्याप्त हैं। इस प्रकार आहार मार्गणा समाप्त हुई, इस प्रकार क्षेत्रानुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये इसमें से हमारे तीन अनुयोग है ना, इसमें क्षेत्रानुयोग है, स्पर्शन है और काल है, उसमें से क्षेत्र प्ररूपणा यहाँ अपने समाप्त होती है। आगे वाली फोसनानुगम, फोसनानुगम ने स्पर्शनानुगम फोसन वो, अब अगले स्पर्शन जो प्ररूपणा है उसको हम शुरू करेंगे, पढ़ना है ना अभी। हम इसके मंगलाचरण गए थे, देखो णमे ऊणे लाइरिये तिहुवन भवन एक मंगल पहिये कलिकल सफुसन घवसणे सुत्तम फोसासियम ओच्छम। नीचे उसका अर्थ लिखा देखो, त्रिभुवन रूपी भवन के प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय मंगल प्रदीप और कलिकाल की कलुषता के स्पर्श को मार्जन करने में समर्थ श्री एलाचार्य को नमस्कार करके स्पर्शनानुगमाश्रित सूत्रों के अर्थ को कहता हूँ। नमिऊण एलाइरिये एलाचार्य। अब पहला सूत्र पढ़ते हैं, है ना? फोसनानुगमेण दुविहो निर्देशो ओघेण आदेशेन। हमने हर एक बार ये दोनों प्रकार के निर्देश यानी कथन देखे थे, एक ओघ निर्देश और एक आदेश निर्देश। एक तो सामान्य प्ररूपणा और एक विशेष प्ररूपणा, एक गुणस्थानों की प्ररूपणा और एक मार्गणाओं की प्ररूपणा। स्पर्शन में भी ऐसा ही होगा। तो स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। अब ये नाम स्थापना वो बात बताएंगे अभी, जैसे पहले हमने देखा था हा? तो नाम स्पर्शन, स्थापना स्पर्शन, द्रव्य स्पर्शन, क्षेत्र स्पर्शन, काल स्पर्शन और भाव स्पर्शन के भेद से स्पर्शन छह प्रकार का है। इसको क्या कहते हैं, इन छह बातों को निक्षेप। उसमें नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये निक्षेप। और कभी कभी शॉर्ट में कहना है तो चार तो निक्षेप कहते ही है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। उनमें स्पर्शन यह शब्द नाम स्पर्शन निक्षेप है। स्पर्शन यह शब्द हमने कहा वो उसका नाम रख दिया ना, वो नाम स्पर्शन हुआ। यह निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है। पहले लास्ट टाइम हमने देखा था, ये तो पहले तीनों ही निक्षेप जो है नाम स्थापना और द्रव्य वाले वो द्रव्यार्थिक नय के, और भाव वाला है वो पर्यायार्थिक नय में। क्योंकि ध्रुवपने के बिना वाच्यवाचक भाव रूप संबंध नहीं बन सकता, इसकी भी हमने चर्चा की थी। वाच्य और वाचक यानी शब्द और उसका जो शब्द जिसको कहता है वो जो वाच्य पदार्थ उनका नित्य संबंध होता है। यह वही है, इस प्रकार की बुद्धि से अन्य द्रव्य के साथ अन्य द्रव्य का एकत्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। किसी अन्य द्रव्य में हम अन्य द्रव्य की बुद्धि से उसमें स्थापना कर देते हैं, मूर्ति में ये भगवान है ऐसी स्थापना हम कर देते, इसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे घट पिठर आदि में, पिठर यानी कोई विशिष्ट आकार का पात्र, यह ऋषभ है, यह अजित है, यह अभिनंदन है इत्यादि, यह स्थापना निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्योंकि दो पदार्थों की एकता की ध्रुवता के बिना स्थापना निक्षेप की प्रवृत्ति असंभव है। यानी उनमें कांस्टेंट संबंध नहीं रहेगा तो हम कैसे, रोज अगर इसका अगर नाम बदलेगा, आज इसका नाम है पेन, कल इसको हम कहेंगे चौक, परसों इसको कहेंगे पेंसिल, तो ये तो अपना व्यवहार भी नहीं बन सकता। निक्षेप तो होता है लौकिक व्यवहार चलाने के लिए, है ना? तो उनका ये संबंध नित्य है। आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य स्पर्शन निक्षेप दो प्रकार का है। ये हमने लंबी चौड़ी कसरत की थी ना, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। उनमें स्पर्श विषयक, स्पर्शन विषयक शास्त्र का ज्ञायक किंतु वर्तमान में अनुपयोगी, अनुपयोगी ने उसमें उपयोग नहीं है, और क्षोभ सहित जीव आगम द्रव्य स्पर्शन निक्षेप है। नौ आगम द्रव्य स्पर्शन निक्षेप, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य स्पर्शन के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें ज्ञायक शरीर द्रव्य स्पर्शन भावी, वर्तमान और समुज्झित यानी त्यक्त के भेद से तीन प्रकार का है। जो जीव का जो शरीर है, जानने वाले जीव का शरीर, वर्तमान का शरीर, भूतकाल का और भविष्य अगले भव का, भूतकाल में जो है उसने कैसे छोड़ा था, तो उसके चुत्त चावित और त्यक्त ऐसा जो हमने देखे थे ना, समुज्झित के लिए त्यक्त यानी भूतकाल की बात, उसको यहाँ समुज्झित नाम दिया, भूत गया एक शरीर को, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो रूप।